के दिल में प्रभु प्यार भर के चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भर के चलो।
सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो,
सबके दिल में प्रभु प्यार भर के चलो।
ओम शांति। थकी थकी ठंडी ठंडी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का जो टॉपिक है, मुझे भी यही आकर पता लगा, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता। अच्छा, फिजिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी से पहले लोग फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहे। इसके लिए लोग काम, नौकरी, अलग से कुछ पार्ट टाइम, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कुछ कुछ रखते हैं। कल को कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो हमारा फाइनेंशियल जो बैक है वो हमें मदद कर देगा। फिजिकल स्टेबिलिटी में भी माँ बाप बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, खिलाने पिलाने में, एक्सरसाइज में। हम जब मकान बनाते हैं उसकी भी स्ट्रेंथ पे बहुत जोर देते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ पे। सरिया, कंस्ट्रक्शन, आप में से हो सकता है कुछ सिविल इंजीनियर रहे हो, हर चीज में मजबूती की जोर देते हैं। लेकिन जब इमोशंस की बात आती है तो उस पर इतना जोर इसलिए नहीं दे पाते कि उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरों को जो करता देखते हैं, हम सोचते हैं वो ही रूल होता होगा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए, अगर किसी की डेथ हो जाती है और जब लोग रो ना रहे हो वहां, तो जो सांत्वना देने के नाम पर जो गए हैं वो आते हुए चर्चा करते हैं, इन्हें तो उसके मरने पर कोई दुख ही नहीं, क्या कैसे कोई रो ही नहीं रहा, तो उनके हिसाब से रोना बहुत जरूरी। किसी के घर चोरी हो जाए और उसको दुख नहीं हो रहा तो आसपास वाले बोलते हैं इसको कोई दुखी नहीं हो रहा। किसी के घर आग लग जाए और वो खुश दिखे तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि शायद इसने तो नहीं आग लगाई खुद, कि भाई दुख होना चाहिए। तो हमने ऐसे रूल्स बना लिए कि ऐसा 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 होता है। कितना अजीब सा जमाना है, जब बच्चा पैदा होता है तो जब रोता नहीं है तो डॉक्टरों को बहुत टेंशन हो जाती है, सबसे एबनॉर्मल है। पैदा होते ही उसे रुला दिया जाता है और फिर पूरी जिंदगी उसे हंसना सिखाने में लग जाता है ना। जिंदगी जिस बच्चे को अभी उसने पहली सांस ली है तो उसको पहले ही डॉक्टर या दाई के थपेड़े लगते हैं बाहर से, अच्छी तरह मारा जाता है ताकि वो कुछ उसकी प्रतिक्रिया करे, प्रतिक्रिया करे। तो जब वो रोता है तो लोग बोलते हैं नाउ ही और शी इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, रो रहा है। बच्चा भी जब बड़ा होता चला जाता है, थोड़ा 2 साल का 3 साल का 5 साल का, तो थोड़ा रोता है तो कहते हैं हाँ नॉर्मल है, बिल्कुल ही ना रोए, चुपचाप बैठा है घर में भी, तो लोग बोलते हैं रो नहीं रहा, शायद सदमा अंदर ले लिया है, इसको रुलाया जाए, इसको रुलाया जाए, इसको रुलाया जाए। रोना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसी कई क्लासेस मैंने बाहर से सुनी, लोगों ने इस पे थीसिस लिखे, बुक्स लिखी। किसी की डेथ पे पेड़ लोग आते हैं रोने के लिए, जिन्हें लोग रुदाली कहते हैं, स्पेशल रोने के लिए आते हैं। पंजाब में उन्हें स्यापा बोलते हैं, उसके लिए स्पेशल आते हैं, वो करने के लिए, रोने के लिए आते हैं कि रुलाया जाता है, वो भाव उत्पन्न किया जाता है जिससे उनके अंदर वो चीज बन जाती है। मैं जब इस संस्था में आया तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी जो मेरे यहां बैठ गई। हमें अभी तक ये तो सिखा दिया गया गुस्सा नहीं करना, उल्टा नहीं बोलना, थूक वहां नहीं फेंकनी, ये तो सिखाया। लेकिन ये किसी ने नहीं सिखाया, उल्टा सोच लिया तो बोलना कैसे नहीं। थूक अंदर बन गई है बदबू देख के तो फेंकनी कैसे नहीं, थूक तो बन गई। कुछ अच्छा बदबू सा दिखा और एकदम सलाइवा सा आया और ऐसा दिल करा अभी थूक दे, अब थूक नहीं सकते, बोला यहां नहीं थूकना। तो वो थूक कैरी करके हम चल रहे हैं जहां मौका चलता है, हैं? बोलो बोलो वहां, देखो बच्चा कितना अच्छा बता रहा है, वहां थूक देते हैं। गुस्से का भी ऐसा है, जहां जोर नहीं चला ये तो सिखा दिया, पिता के आगे उल्टा नहीं बोलना, चाचा के आगे उल्टा नहीं बोलना, लेकिन उल्टा सोच लिया तो वो जहां मौका लग जाता है वहां निकाल देते हैं। उल्टा भी निकाल दिया, गुस्सा भी निकाल दिया, थूक भी निकाल दिया, लेकिन धीरे धीरे ये रेगुलेटर खराब होना शुरू हो जाता है, हमारा थर्मोस्टेट खराब होना शुरू हो जाता है, कैरी करना जो उसको रिटेन करता है थोड़ी देर के लिए वो खराब हो जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे बुढ़ापा आता है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कर्मेंद्रियां अपना साथ देना बंद कर देती हैं, तो पता नहीं लगता कहां कब क्या चीज रोकनी चाहिए, वो रुक नहीं पाती। ऐसे ही जब इमोशनल बुढ़ापा आ जाता है तो हमारी भी ये चीजें रुक नहीं पाती, हमारे इमोशंस रुक नहीं पाते। कभी कभी तो ये इतने समझदार होते हैं ये वहीं निकलते हैं जहां हमें निकालना चाहिए, और एबनॉर्मल स्टेज वो आ जाती है जब ये वहां भी ना निकले जहां नहीं निकालना चाहिए। ये हो गई इमोशनल अनस्टेबिलिटी, और या वो हर जगह निकलने लग जाए जहां नहीं निकालना चाहिए वहां भी निकल रहे हैं। जैसे हमें वॉमिटिंग आती है, मैं खड़े होकर सुनाऊं तो अच्छा रहेगा, आसपास पास आ जाता हूं थोड़ा करीब से, मेरी ना दूर की नजर कमजोर है और यहां दूर दूर फैले 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 दिखते हैं। जैसे पार्क होता ना उसमें कभी कभी कहीं कहीं हरा है कहीं कम है, तो ऐसे खुले खुले बैठते हैं, क्या करें दिल्ली से आए हैं ना तो इतनी भरी जगह से आए हैं तो अच्छा लगता है आसपास थोड़ा खुला 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 खुला, वहां तो दीवारें भी सटी हुई हैं, गलियां भी सटी हुई हैं, सब कुछ सटे हुए हैं। तो क्या होता है हम धीरे धीरे इमोशनल अनस्टेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ते हैं, हम में से कुछ पत्थर हो जाते हैं, उन पर किसी का असर ही नहीं पड़ता, तो वो भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे मोम से हो जाते हैं कि अंगूठा लगाओ तो टूटना शुरू कर देते हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी कहते किसे है? आप में से ये सच्ची बात बता और पूछूंगा और आप हाथ खड़ा करना, मैं भी हाथ खड़ा करूंगा। सच में ये बड़ी बड़ी जो थीसिस यहां मैं ऐसा भी लिखवा सकता था, प्रोजेक्टर बनाता चलाता स्लाइड्स आपको लिखवाता और आप चश्मा ऐसे करके कहते कि एक मिनट थोड़ा बैक करना स्लाइड, वो लिखना रह गया तो वो लिखते रहते। मेरे क्लास तो नहीं कहूंगा, मेरी इस बातचीत में मैं ये चाहता हूं कुछ भी ना लिखो, क्योंकि लोग लिखते तभी हैं जब दिक्कत होती है। आपके घर में भी जो कागज है ना वो दुखड़ों के कागज ही हैं, सुखड़ों के कागज नहीं है। बीमार हुए तो उसके कागज बड़े सारे लिखे हुए पड़े हैं, जब सुख आना शुरू हुआ तो वो कागज घूमने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप में से किन को अपने मां बाप पर जब छोटे थे बच्चे थे गुस्सा आता था? मैं भी हाथ खड़ा करता हूं। मां बाप पे गुस्सा आता था, गुस्से का मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं था, उनकी कई बातों पे गुस्सा आता था, फिर मां समझाती थी नहीं ऐसे नहीं, बाप है, बड़ा भाई ऐसे समझाते थे तो आता था। हाँ हाथ खड़ा करें, ठीक है। अच्छा कितनों को अपने टीचर्स पे बहुत गुस्सा आता था? अच्छा कितनों को अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है? देखो बच्चे कह रहे हैं हाथ उठाओ, देख रहे हैं। ये भी इमोशन है। हम हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ रहे हैं, एक समय था टाइपराइटर पे उंगली दबा दबा के मारा करते थे तब जाके चलती थी। टीवी ऐसा था जब तक उस पर दो थप्पड़ ना मारे टीवी चलता नहीं था। स्कूटर पे भी दो लाते ना मारो स्कूटर चलता नहीं था। अब टच स्क्रीन आ गए हैं, बिल्कुल टच करना होता है और वो चलते हैं। हम हार्डवेयर के जमाने में पड़े हुए हैं। हमारे बच्चों हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी तरह से ठोक बजा कर चलाया है। हमारी स्क्रीन ही तभी आती थी जब दो पढ़ते थे, तभी आती थी। अब बच्चे सॉफ्टवेयर की हाईटेक होते जा रहे, डिजिटल इंडिया होते, अब केवल टच स्क्रीन में आता है ऐसे। हम जब छोटे थे तो हमें पता नहीं लगता था, पढ़ने के बाद पता लगता था माँ ने मारा बाप ने मारा ऐसे। अब तो वो बोलते हैं मारूं, बच्चा बोलता है। तो इमोशंस में हम अपनी नेचुरल स्टेज में आना शुरू हो जाते हैं। आप जब भी किसी को तमीज की बात सिखानी हो तो आप इंग्लिश में सुनाते हैं, नो बैड थिंग, गुड बॉय, बैड बॉय, अच्छी इंग्लिश निकाल निकाल के सिखाते हैं। जब इमोशन स्ट्रांग होने लग जाता है तो अपनी मदर टंग आनी चाहिए, तू इधर आ, तू मैं दसाऊंगा, आ जाता ना अपना असली जो इमोशन है वो अपनी मदर टंग में ही निकल के आ जाता है। क्योंकि इमोशंस आर्टिफिशियल नहीं होता, वो निकल के आ जाता है। चेहरा एक ऐसी चीज है जो बता देती है, और हम में से इस दुनिया में कई ट्रेंड हो गए हैं अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करने में। खासकर महिलाओं की मजबूरी है इमोशंस को मैनिपुलेट करके चलना, ऐसे परिवारों में चलना जो उनको जिनको वो पसंद नहीं है, उनको हंस हंस के मिलना और उनके लिए हंस हंस के खाना बनाना। इमोशंस अलग है, करा कुछ और जा रहा है, तो ये मैनिपुलेशन आ गई है। जैसे सेल्स एजेंट हैं जो रिसेप्शन पे बैठते हैं, जो सेल्स सर्विसेज में जुड़े हैं, तो कई बार कैसे समझाते हैं। तो अब धीरे धीरे नेचुरल चीजों पर आना शुरू करते हैं। आप में से कितने हैं जो जिनको मौका मिला दिल खोल के रोने का, दिल खोल के, चाहे अकेले में रोए चाहे किसी के आगे रोए, दिल खोल के रोने का मिला मौका, हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है। कितने ऐसे हैं जिन्हों को रोना तो आया लेकिन इसी संकट में रहे कि ये लोग क्या कहेंगे, सुबकियां लेते रह गए हैं। हाँ, मैनिपुलेट करना आता है। अब बताते हैं जब हमें वॉमिटिंग आती है, जैसी वॉमिटिंग आती है तो अंदर का सिस्टम करता है बाहर निकाल दे। तो कुछ लोग जहां मर्जी वॉमिटिंग कर देते हैं, जब वो कुछ लोग जहां मर्जी वॉमिटिंग करते हैं तो जो लोग दूसरे देख रहे होते हैं वो उनको बुरी नजर से और ऐसे देखते हैं क्या, और उससे किनारा करते हैं। मैं अभी दुख वाले इमोशंस को वॉमिटिंग से जोड़ता हूं, आप अपने दुखों को उससे जोड़ते चले जाना। जैसी हमें वॉमिटिंग सेंसेशन आया और हमने एकदम किया, चाहे बस में या कहीं, तो बस में जिस सीट पर आप बैठे हो उसके आसपास की 2-3 सीटें सारी खाली हो जाती है, सब भाग जाते हैं कि भाई इसे आ रहा है। लेकिन जैसी आपको वॉमिटिंग हुई, नाउ यू आर फीलिंग गुड, हल्का फील कर रहे हो। लेकिन आपके आसपास वाले जो दूर हो गए उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसी घटना को दोबारा से किया जाए, आपकी मां साथ में बैठी है, ये मेरे साथ हुआ है, आपकी मां साथ में बैठी है और आपको एकदम वॉमिटिंग आई, मां उठ के भागी नहीं, उसने अपना हाथ लिया, हाथों का कटोरा बनाया और मुंह के आगे रख दिया। सारा कुछ करने के बाद वो मां बोलती है और आई है, और बच्चा बोलता है नहीं, और कर ले, कह नहीं। फिर वो जाती है, साफ करके आती है और उसको पोछती है। तो वॉमिटिंग कहां निकली और किसने संभाली, यहां डॉक्टर के उधर आई है तो डॉक्टर के सामने आ रही हो तो डॉक्टर यहीं से इशारा करता है, वो वाशविशन वहां जाओ, वहां कोना रहा तो वहां जाओ करके आ जाओ, वो करके आ जाओ। आप में से कुछ काफी लोग समर्थ हैं जिनको वॉमिटिंग के लिए जगह नहीं मिली तो वो वाशविशन ढूंढ लेते हैं अकेला, और बहुत किस्मत वाले हैं जिनको माँ जैसे रिश्ते मिले हैं, केवल माँ नहीं सभी रिश्ते, और बहुत 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 किस्मत वाले हैं जिन्हें परमात्मा माँ या पिता के रूप में आके मिल गया, वो स्थूल वॉमिटिंग सहेज लेती है माँ, ये सूक्ष्म अंदर की जितना भी कचरा है वो सब हाथ आगे करके सहेज लेता है और फिर बोलता है और आई है, और आई है, और हम कहते हैं नहीं अभी नहीं आई, कह रहे ठीक है, और वो जाके साफ कर देता है। ऐसा ही मेरे जीवन के साथ हुआ, मेरे एक एक दुख, मेरे एक एक अंदर का इमोशंस उसने परम शक्ति ने ऐसे सहेजा जैसे माँ सहेज रही है। मेरी लौकिक माँ भी सहेज सकती थी, लेकिन मेरी लौकिक माँ को भी वॉमिटिंग आ रही है तो उसको कौन सहेजेगा, उसको कौन सहेजेगा। हम सबके रिश्तों में सब पेशेंट हैं तो एक तो डॉक्टर चाहिए ना, एक तो डॉक्टर चाहिए ना, तो वो डॉक्टर के रूप में मिला। कई बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो डॉक्टर के रूप में परम शक्ति सिखाता है इसको ऐसे ही रहने दो, और कई बार मां बनकर आता है वो समझ लेता। ये है इमोशंस का जुड़ना किसी के साथ। जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे सुख कोई शेयर कर ले, हम सुख किसी के साथ शेयर कर ले वो बड़ी बात नहीं है, हमारे दुख कोई शेयर करने के लिए तैयार बैठा है हमसे दुखों को, हमारे दुखड़े कोई सुनने वाला बैठा है, ये रिश्ता जीवन में इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया की हालत ऐसी है, ये चैतन्य शरीरों में बैठे हुए लोग नहीं सुनते तो वो पत्थरों की मूर्तियों के पास जा जाके सुनाते हैं लोग, और वो कुछ भी उल्टा नहीं बोलते इसलिए लोग उसको पूजते हैं। वो क्यों पूजे जाते हैं, उनको एक ही लाइन बार बार जाके समझाई जाती सुनाई जाती है, एक ही दुखड़ा बार बार जाके सुनाया जाता है, उसके बावजूद भी वो मुस्कुराते दिखते हैं इसलिए वो पूजे जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक लोगों को या उन पत्थरों की मूर्तियों को दुखड़े सुनाते रहेंगे? क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे कि अब आप अपने दुखड़े सुनाने की स्टेज से ऊपर उठ जाएं और दुनिया आपके पास आए अपने दुखड़े सुनाने और सुना के हल्के हो जाएं? ये वो स्टेज है कि जब आप भूखे थे, मैं अपने को आप शब्द हटाकर मैं बोलता हूं, आप अपने आप जोड़ते रहना, कि जब मैं भूखा था और किसी के पास गया कि मेरी सुधा शांत करो, और उसने भूख ही नहीं मिटाई, मुझे टोकरा भर कर दिया पूड़ियों का, औरों को भी बांट दे, औरों को भी बांट दे, और जब वो बांटना आया तब पता लगा जिंदगी ये थी, इससे पहले तो भिखारी थे, इससे पहले तो भिखारी थे। तो जीना सीखना मतलब देवता जैसे लक्षण धारण करना। इमोशनल स्टेबिलिटी का परफेक्ट एग्जांपल्स हमारे मंदिरों में मूर्तियों के रूप में सजे सजाए देवी देवता है, गणपति, हनुमान, दुर्गा, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, शंकर, इन सबको जब हम देखते हैं ये हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के उदाहरण है। फिजिकल स्टेबिलिटी में लोग एक्सरसाइज कराते हैं, कालांतर में जब हम अपने को ये जानते थे कि हम आत्मा हैं, तो जो जो चीज परमात्मा ने सिखाई थी धीरे धीरे हम देह समझने लग गए, तो हम वो चीजें देह में लेकर आने लग गए, देह में लेके। परमात्मा ने कहा अपने दिल को दिमाग से ऊंचा रखो, कीप योर हार्ट अबव योर हेड, तो हमने शीर्षासन शुरू कर दिया, सर नीचे दिल ऊपर, दिमाग नीचे दिल ऊपर हो जाता है ना उल्टा करे तो हमने फिजिकली आसन वो अपनाने शुरू कर दिए कि इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। सर्कुलेशन ब्लड से भी पहले इमोशंस का चाहिए, इमोशंस का चाहिए। आज तिहाड़ के अंदर बैठे हैं लोग, मेंटल एजुलम के अंदर लोग भर्ती हैं, जिनका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन इमोशनल सर्कुलेशन उनका ब्लॉक्ड है, दे आर नॉट हेल्दी। तो जब आप इमोशंस को समझने लग जाएंगे और इमोशंस को चैनलाइज करना सीख जाएंगे तब आप स्टेबल हो जाएंगे। आज हम रूम भी बनाते हैं, ये कमरा भी बनाया, ये हॉल भी बनाया, तो इसको स्टेबल किस पॉइंट से दिखाया कि यहाँ आंधी आती है, तो आंधी को रोकने के लिए हमने चीजें लगाई, शीशे लगाए। और जब भी आपके घर में आंधी आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं है? खिड़की और बंद कर देते। आप किसी कहीं ऐसी जगह जाए जहां जैसे ही आंधी आए और वो दरवाजे खोलता जा रहा है और आ जाओ और आ जाओ और आ जाओ, तो आप उसे क्या कहेंगे? हाँ बोलो ना, पागल। और कोई उससे भी अच्छा शब्द? हाँ मूर्ख। और हाँ बुद्धू, अज्ञानी है बुद्धू। हाँ बुद्धू कहेंगे। अब हमारे बारे में क्या इरादा है? जब भी कोई इमोशनल आंधी लेके आता है हमारे पास, गुस्से से भरा हुआ पूरा तूफान लेकर आता है, और हमें पता है आंधी आ रही है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी कभी झूठी हो सकती है, लेकिन हमें पता लग रहा है ये व्यक्ति आया है, ये बॉस है, ये घर में पति है, ये आंधी लेकर आए हैं और अब ये आंधी आ रही है, हमें उस समय क्या करना चाहिए? अंदर का सिस्टम के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए, तो सारी आंधी अंदर आ जाएगी। तो जैसे मकान गंदा हो गया, ऐसे अंदर का सिस्टम रोज गंदा होता है। उस समय इन्होंने कहा खोल देने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, आए या तो ऐसा खोलो कि इधर से जाए और उधर से निकल जाए है? हाँ, लेकिन अगर हम पहले से बंद कर लें कि अगर खतरा है तो बड़ा सुख मिलेगा। और इस इमोशनल स्टेबिलिटी के माहिर हैं बच्चे, छोटे बच्चे इसमें माहिर हैं। उनको जब आकर लोग डांटते हैं पेरेंट्स, तो उनको पहले पता लग जाता है आज डांट पड़ेगी, और वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है कि आज डांट पड़ेगी, तो पूरी तरह से अंदर से बंद होकर आते हैं। आप जो मर्जी सुनाते रहो ऐसे खड़े रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपको डाउट होता है ये सुन भी रहा है या, फिर उससे पूछते हो सुन रहा है? हाँ हाँ सुन रहा हूं। और वो प्लानिंग बना रहा होता है अब इसके बाद मैच खेलना है, वहां जाना, हाँ हाँ पापा बोलते रहो। फिर आप बोलते हो कोई असर नहीं इस पर, क्या बोलते हो? कोई, यही जब हम हो जाएंगे तो जिंदगी जीना नहीं आ जाएगा। कोई भी कुछ बोले और हमारा सिस्टम ऐसा हो जाए, कोई भी असर, हम तो पहले से तैयार बैठे हैं, कोई एक मारे तो हम दो अपने शीशों को खुद तोड़ ले, तीन मार दिए हमने, बस तैयार रहे। बच्चे इतने एक्सपर्ट है, जब मैं छोटा था तो मेरा भाई मुझे बताया करता था, जैसे घर में घुसा तो मेरा भाई कहता था आज तापमान हाई है, गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, कृपया सावधानी से आना, और ओले पड़ने के पूरे पूरे चांस हैं। ओला समझ गए ना है? अब हम जाके चुपचाप कॉपी उठाते थे और ऐसे करके बैठे रहते थे, चाहे पड़े ना पड़े हमें पता था कभी भी बारिश आ सकती है, और पता लग रहा था बारिश मां तक पहुंच चुकी है, फिर भाई तक पहुंच चुकी है, और थोड़ी देर बाद हमारे पास भी आने वाली है, तो तैयार रहते थे, तो पूरी तैयारी थी। बच्चे इमोशंस दूसरों के बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए कहा बच्चे बन जाओ। यहां सुबह 7 बजे हमें सबसे पहला एक शब्द सुनने को मिलता है, मीठे, बोलो मीठे बच्चे, और ये सदा हमें याद दिलाता है मीठे बच्चे। और जिंदगी का एक ही नुक्शा, नंबर 2 पॉइंट जो पहला बताया था, नंबर 2, बच्चे बनोगे तो हर चीजों से बचते चले जाओगे, हर चीजों से बचते। कैसे? जब बच्चा होता है, अभी यहां बैठा हुआ आगे आता है और किसी बात पे, मान लो आपके घर में किसी बात पे रोने लग जाता है, तो आप क्या करते हो? उसको कहा वो गई, वो ये और गुदगुदी कर देते हो, तो बच्चा क्या करता है? हंस पड़ता है, हंस गया और उसके बाद वो सब भूल गया। अब हम बड़े हो गए और किसी की बात चुभ गई और हम भी आंखों वाला नहीं तो वैसा रोना रो रहे, और कोई आके इधर उधर की बात करने लग जाता है, तो हम कहते हैं बच्चा समझ रखा है, मर भाई मर, बड़ा होके मर, बच्चा था, इतना तो कैपेसिटी होनी चाहिए बच्चे की तरह कि कोई गुदगुदी करे तो हम हंस दे, कोई भुलाने का प्रयास करे तो हम भूल जाए। जब भूलना आ जाएगा तो यही इमोशनल स्टेबिलिटी है, यही इमोशनल स्टेबिलिटी है। बातों को भुला दे, कोई भुलाने के लिए आए तो, ये दूसरी बात। तीसरी बात, बच्चों से एक चीज सीखनी है, बच्चों का डीवीआर सिस्टम नहीं होता। डीवीआर समझते हो, सीसीटीवी में डीवीआर लगा होता है, एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। सीसीटीवी टाइप होते हैं बच्चे, किसी को देखा वो देखा, ये देखा वो देखा, और फिर भूल जाते हैं। हमारा डीवीआर बना हुआ है और भरी हुई है बातें, बहुत भरी हुई है। हमारा मोबाइल का भी ऐसा सिस्टम बना हुआ है, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, भरी, और इतना भरा पड़ा है जब मोबाइल में भी काफी चीजें भर जाती हैं तो आपका मोबाइल बताता है स्पेस इज गेटिंग स्लो फुल। तो क्या करना होता है, क्या डिलीट करना होता है, हैं? जो भी फालतू की चीज होती है उसे डिलीट करना है। अब आपका अपने बारे में क्या विचार है, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, और कईयों तो अनजाने में पिछले जन्म की बातें भी एज इट इज नहीं, उसकी वो दुख या उसके भाव सहेज के रखे हुए हैं। स्पेस ज्यादा तो है लेकिन स्पीड तो स्लो हो गई ना, प्रोसेसर तो स्लो होता जा रहा है ना, क्योंकि वो अंदर भरा पड़ा है, तो उसको भी स्लो करते हैं, उसको भी डिलीट करना सीखें। तो उसको भी डिलीट जब करना आ जाएगा तब जीवन में चीजें आ जाती हैं। फिर कहा मैन्युपुलेट कैसे करते हैं, मैन्युपुलेट कैसे करते हैं। आप में से एक या दो कोई ऊपर आएंगे, दो या तीन कोई भाई बहन कोई भी आ जाए, एक आ जाए, दो आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आओ आओ, पीछे से भी कोई बहनों में से भी आ जाए, दो आ जाए, आओ आओ, आ जाए, आ जाए, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, आए आए आए, दो आ जाए आ जाए। तो अभी देखना आप जब इमोशंस के साथ मैन्युपुलेट करते हैं तो कैसा होता है। आगे ही आगे खड़े हो जाओ, मैं पीछे से बताता हूं। पहले थोड़ा सा बात सुन लेंगे, इधर भाई साहब, इधर इधर इस तरफ आ जाए। हाँ हाँ, अभी क्या करना है, इन्होंने केवल 30 सेकंड आपके जीवन में जो सुख की घटनाएं आई हैं, सुख की घटना मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई टाटा बिड़ला की तरह कंपनी खरीद ली, सुख मतलब सुख चाहे कंचे मिले हो, सुख तो सुख ही है, और 30 सेकंड दुख की घटनाएं जो आई हैं उनको सोचना है। जब मैं कहूंगा स्टार्ट तो आपने सोचना है खड़े होके, अगर आपको लगता है कि आंखें खुली होंगी तो किसी को देख के अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप आंख बंद भी कर सकते हैं, तो आपने सोचना शुरू करना है, स्टार्ट कहूंगा। ये आपकी च्वाइस है, आप सुख सोचें या दुख सोचें पहले। लेकिन जब मैं बीच में कहूंगा चेंज, तो आपने सुख सोच रहे हैं तो दुख सोचना शुरू कर देना, और दुख सोच रहे हैं तो सुख सोचना शुरू कर देना, चेंज कर देना है बस, उस पॉइंट को चेंज कर देना, इतना ही करना है। ये ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ जब यहाँ की इतनी पॉजिटिविटी आती है वातावरण में, तो हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ जब हमने कहा सुख और दुख सोचो, कह जी मैंने दुख सोचा ही नहीं, सुख ही सोचता रहा, तो कई बार सोचते दुख ही दुख सोचता रहा। तो आपने उन चीजों को लाकर उस मोमेंट में वापस पहुंच जाना है, चाहे वो 25 साल पुरानी थी चाहे 26 साल पुरानी थी, वहां वो पहुंचकर उसको फील करके वापस आना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। शुरू करें, और आपने भी देखना है इनको भी और अपने को भी, चेक कर सकते हैं 30-30 सेकंड सोच के। स्टार्ट,
चेंज
चेंज। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। अभी ये यहीं खड़े हैं, आप बता सकते हैं इनके चेहरों को देखकर कि ये इन्होंने सुख सोचा या दुख सोचा पहले, पता लग रहा था है? इनका लग रहा था पता है? पहले क्या सोचा आपने, पहले इन्होंने
पहले क्या सोचा? खुशी के बारे में सोचा था,
उसके बाद
में चेंज के बारे में, उसका विपरीत सोचा मैंने।
और आपने
पहले सुख बाद में,
और आपने
पहले
सुख,
और आपने पहले दुख फिर बाद में। हाँ, मैंने वही मैं कह रहा था ना, हमारे पास एक दो वैसे आएंगे मस्त, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। तो थैंक यू। इनके चेहरों से आप पता लगा पाए कि ये सुख सोच रहे थे या दुख, पता लग जाता है? है लग रहा था ना पता। और आप घर में भी अपने घर वालों का पता लगा देते हैं ना कि अंदर क्या चल रहा है। इसका मतलब आप चाहे छुपा के रहे, चाहे आप म्यूट बटन पे चल रहा है अंदर सिस्टम, आपके डेस्कटॉप पे सब कुछ दिख रहा है लोगों को, ये सुख सोच रहे हैं या दुख सोच रहे हैं, सब पता लग जाता है। हम ऊपर से जो मर्जी एक्टिंग कर लें कि मैं खुश हूं परिवार में, लेकिन जो करीब दिल से जुड़े हुए हैं उनको पता लग जाता है कि ये सुख है या दुख है। जो रोज के हमारे संपर्क में आते हैं उनको पता लग जाता है। तो जब हमें दूसरों का पता लग जाता है तो हमारा भी सबको पता लगता होगा, लगता होगा। अब हम चाहे जितनी मर्जी पॉजिटिव टॉकिंग कर लें, क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग पॉजिटिव टॉकिंग पर्सन होते गए हैं लेकिन नेगेटिव थिंकिंग, दे आर बिकमिंग नेगेटिव थिंकिंग बट पॉजिटिव टॉकिंग। टॉकिंग पॉजिटिव आ गई है लेकिन विचार नेगेटिव। जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे किसी के पास और वहां जाते ही कहेंगे कुछ नहीं होगा इसको, और बाहर निकलते कहेंगे बचेगा नहीं है, ये इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, यहां से तो कोई बच के गया ही नहीं। तो विचार क्या दे रहे हैं है? और बोल क्या रहे हैं? बच्चे को बोलेंगे आजा बच्चा बैठ जा, कहना पढ़ ले, प्यार से बोलेंगे, और अंदर से कहेंगे मानेगा नहीं है कमबख्त। तो अंदर से अलग, वो आजकल कुरकुरे आते हैं ना मीठे, आधे मीठे और आधे नमकीन वाले। तो खुश जो हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर ने कराया खुशी या सक्सेस, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, आपके जीवन में आपको सक्सेस और हैप्पीनेस का चुनाव करना पड़े तो किसका करोगे? सक्सेस और हैप्पीनेस, अगर आपको ऑप्शन मिले खुशी या सफलता, इसका चुनाव करें तो जो कहते हैं सफलता का चुनाव करेंगे वो हाथ खड़ा करें, सफलता चाहिए। और जो कहते हैं खुशी चाहिए, और जो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में सोए हुए हैं, सोए का मतलब लटके पटके पड़े हैं, उनको कोई भी मिल जाए, या कईयों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया, वो बोले जी जब ये दोनों ले जाएंगे जो बच जाएगा हम वो ले लेंगे, है ना, हम वो ले लेंगे, ऐसा ही है, है? देखो खुशी और सफलता में एक अंतर है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए दैट इज कॉल्ड सफलता, व्हाट यू वांट इफ यू गेट दैट इज सक्सेस। लेकिन जो आपको मिला हुआ है उसको आप चाहने लग जाओ तो उसे बोलते हैं खुशी, उसको बोलते हैं खुशी। और ये जिंदगी का रूल है, जबड़े में 32 दांत हैं, एक दांत नहीं होता, जीभ घूम घूम के वहीं जाती है जो दांत, हमारी आधी जिंदगी उसी में बीत जाती है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसकी चिंता नहीं है, जीव उनको नहीं गिनती कितने हैं, जो नहीं है बार बार वहीं जाती है, वहीं जाती है। तो अगर हमें ऐसी आदत पड़ी हुई है जो नहीं मिलता उसी को याद करना, उसी को रोने की, तो हम खुद तो दुखी है ही हैं, चार पांच को दुखी करने का भी हमने ठेका घर में लिया हुआ है, लिया हुआ ठेका। हमारे घर में पहुंचते ही आप सोचो, ये वर्क लाइफ बैलेंस में कभी मौका लगेगा तो कराएंगे, आप जब घर पहुंचे हैं तो आपको देखते ही घर वाले ये वेट करते हैं कि ओहो आ गया, कहां थे इतने दिन, या ऐसे कहते हैं कमबख्त फिर आ गया। लोग वेट करते हैं आपके आने की, या सुबह वेट करते हैं आपके जाने की कि निकला, और घर वाले कहते हैं आ गब्बर गया, और जब वो गब्बर ऑफिस पहुंचता है तो लोग ऑफिस वाले कहते हैं गब्बर, अच्छा है अच्छा, तो ऑफिस वाले हैं, तो तुलना गब्बर से करवानी है ये कैसे करवानी है। तो खुश रहना जो हमारे भाई करा चुके हैं, खुशी का मतलब ऐसा नहीं है कि दहाड़े मार कर हंसना, अंदर से खुश रहना। और इसके लिए एक चीज है कि हमें कहीं चिपकना नहीं आना चाहिए, हम चिपकना सीख गए हैं, चिपकना। आपने देखा है घड़ी की सुई कहीं अटक जाती है, अगर घड़ी की सुई अटकी, देखी है हमने किसी हॉल में घड़ी की सुई अटकी है, बस ऐसे 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 चलती रहती, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या बोलते हैं उसे, क्या कमजोर है, हैं? सेल कमजोर है। अब हमारी भी जीवन में कहीं ना कहीं सुई अटकी हुई है, कहते हैं ना इसकी सुई वहीं अटक गई है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और कोई कहता तो चल जाता, और सबके आगे कहा, और मेरे उनके आगे कहा, तो वो ऐसे कभी सुई ऐसे कभी ऐसे 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 अटकी जा रही है। अब कोई आता उस सुई को उंगली लगाकर थोड़ा सा आगे कर देता है 3 घंटे, अरे कोई बात नहीं, तो वो 12 पे थी अब 3 पे आके फिर अटकती है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये भी मुझे ही समझा के गया, उसको तो समझाता नहीं है। फिर दूसरा आया वो 6 पे कर गया सुई, फिर वो भी सुई अटकी हुई है, तो वो धक्का स्टार्ट जैसे चलती है, वो एक दिन पूरा करवा देते हैं, लेकिन सुई में दिक्कत कहां थी, सुई में दिक्कत थी कि मोटर में दिक्कत थी। तो अभी भी इसीलिए हम भी अभी जिंदगी में अपनी सुइयां ही चेंज करवा रहे थे, आज आप ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां मोटर चेंज होती है, और जैसे ही सेल चार्ज हुआ, जैसे ही सेल चार्ज हुआ, सुई अपने यहां टक 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 निकल रही है, और जब सुई निकल रही है चल रही है, तो इस घड़ी को सब रखते हैं, रुक जाए फेंक देते हैं। अपने बारे में भी पूछ लेना, अगर मैं कहीं अटका हूं तो घर वाले डिसाइड कर रहे हैं कि इसे फेंक देना चाहिए, संगठन में भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि इसे फेंक देना चाहिए, कंपनी वाले भी सोच रहे हैं अटक ही गया इसे फेंक देना चाहिए। तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अटकना मतलब सेल वीक, और यहां रोज सुबह से शाम तक या सुइया साफ नहीं की जाती, या सेल चार्ज किया जाता है, तो रोज सेल चार्ज करो और सुई चलती रहे, सुई चलती रहे चलती रहे। तो पॉइंट नंबर 3, सुई जब भी अटके अपने को ही पूछना है, ये जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उससे अच्छा रोज अपने को देनी है। मैं तो अपने को बोलता हूं, संजीव तेरी आज सुई अटक गई यार, तू कहां वही 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 बात सोच रहा है, सेल चार्ज कर और आगे निकल आगे निकल आगे निकल। तो इस तरीके से फिर छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना। कल भी मैंने महावाक्य सुने कि हम बड़े बाप के बच्चे हैं, बड़ा दिल रखना है, छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं। और मैंने देखा जब छोटी बातों को आप डोंट केयर कर देंगे तो अपने आप ऊंचे चढ़ेंगे। मैं 9th class में था, 10th में, 9th या 10th में था, जब मैं 11th में गया तो स्कूल चेंज हुआ, तो जब जो दूसरा स्कूल गया था तो वहां जब मैं गया तो वहां के बच्चे मेरे से सीनियर थे, तो जैसे रैगिंग करते हैं, तो जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो वो मेरे को देख के हंसने लगे बच्चे, तो खूब हंसे, तो मैं पूछूं हां जी, तो वो क्या बोले कि मैं जब जाऊं वो हंसी मजाक उड़ाए, तो एक दिन मैंने उनके पास जाके पूछ लिया हां जी क्या हुआ, तो वो ऐसे ऐसे करके हंस रहे थे, तो मुझे थोड़ी देर बाद समझ आया कि मेरे दांत बाहर हैं थोड़े से, ये तो मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह रहा हूं, थोड़े से तो दांत बाहर हैं, तो वो इस पे हंसते हैं। तो जब उन्होंने मेरे को पता लगा तो मैं घर आया, शाम को शीशे के आगे देखा और ऐसे करके देखा, और मैंने कहा दांत तो तेरे बाहर है पर हंसने की चीज तो तू है। अगले दिन गया जहां वो 4 बच्चे हंस रहे थे, मैं उनके पास जाके खड़ा हुआ और मैं हंसने लग गया। वो बोले तू क्यों हंस रहा है, मैंने कहा तुम क्यों हंसते हो, कहता तेरे दांतों पे, मैंने कहा दांत मेरे हंसो तुम ना, आज से दांत मेरे तो हंसूंगा भी मैं। अब वो जब मुझे मिले मैं उनके पास जाऊं और ऐसे कर दूं, वो बेचारे इधर उधर भागे, जब जाऊं मैं उनको ऐसे कर दूं वो इधर उधर भागे। तो ये संसार का रूल है, दुनिया उसी को चढ़ाती है जो चिढ़ते हैं। आप चिढ़ना बंद कर दो सिस्टम दूसरा घर देखता है, ऐसा ही है ना। हम जब युवा इसमें कॉलेज में थे तो कोई पीछे से आके घूसा मारता था ऐसे, हम कहते बड़ा मजा आ रहा है एक और मार, कोई नहीं मारता, बहनों में होता ना, वो किसी के आके सीनियर बाल खींचते, कह रहे अच्छा लग रहा है यहां से खींच, कोई नहीं खींचता, क्यों खींचा, तो फिर जाके खींचते हैं। तो आप चिढ़ना बंद कर दो, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा दिल। आप अभी से अपना बड़ा दिल कर दो, नहीं तो एक बीमारी है जिसमें बड़ा दिल हो जाता है और फिर डॉक्टर काट के ठीक करता है। जो जो डॉक्टर आपको कहता है वो सारी चीजें इमोशन से जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें इमोशन से जुड़ी हुई हैं, वो फिजिकल और रिश्तों में आती हैं। आपने गांठ बांध रखी है किसी के प्रति, तो आपके दिल में और बॉडी पार्ट्स में गांठें पड़नी शुरू हो जाएंगी। जितना मर्जी इलाज करा लो, आपने देखा गांठ कटवा के उसका ऑपरेशन करवा लो, सर्जरी करा लो, वहीं गांठ आके दोबारा पड़ेगी, वहीं गांठ पड़ती है, क्योंकि मन ने गांठ बांधी हुई है। ये ऐसा और ये ऐसा। हम सब पीएचडी हैं औरों के बारे में, यही हमारी इमोशनल अनस्टेबिलिटी है। हम 24 घंटे दूसरे को देख रहे हैं, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये ऐसा करता है। मतलब गाड़ी हम अपनी चला रहे हैं, दूसरे की गाड़ी का बस चले तो सर घुसा के उसका स्टीयरिंग चला दें हम कि इसको ऐसे चलाना चाहिए। तो दिक्कत हमारी यही आ रही है, दूसरे के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो क्या सीखना है? क्या सीखना है? हर चीज यहां से जुड़ी हुई है, हर चीज यहां से जुड़ी हुई है। जिनको छोटी छोटी बातों में चिंता करने की आदत है, ये माइग्रेन, माइग्रेन मतलब मेरा दाना, मेरी बात तो मानी नहीं, मेरा क्या होगा, उनके सर में माइग्रेन रहता होता है ना, कईयों को आधा सर का दर्द होता है। जिन्होंने अपने मन में कढ़ाई बनाई हुई है और रोज लोगों की बात को फ्राई करके खाते हैं, किसी ने कह दिया तो किसी काम का नहीं है, तो उसको लिया कढ़ाई में डाला, पकाया और थोड़ा आज खाया, थोड़ा संभाल के रख दिया, फिर अगले दिन उसी बासे खाने को दोबारा से डालते हैं, नया फ्लेवर डाल के उसे पकाते हैं, फिर खाते हैं, फिर कहते हैं यहाँ एसिडिटी सी है, यहाँ ना जलन जलन सी, आग सी लग रही है यहाँ। बोलो तली, डॉक्टर बोलता है तली हुई चीज मत खाओ, तो बोलता नहीं मैं तो कुछ नहीं खाता, दलिया ही खाता हूं। अरे यहाँ रोज तल तल के खा रहा नए पकौड़े, एक ही चीज का कभी ब्रेड पकौड़ा कभी समोसा बना बना के खिलाता है, उसको छोड़ दो। हर चीज की तली हुई चीज रोज फ्राई करके उन चीजों को खाते हैं, नए नए। अच्छा, लोगों ने दुखी होने के नए नए तरीके इजाद किए हुए हैं, दुख भरी बातों को रिकॉर्ड किया हुआ है। एक हमारे पास काउंसलिंग के लिए बहन आई, उसने रिकॉर्डिंग सुनाई कि उसके पति ने मेरे को ऐसे ऐसे गंदे शब्द बोले, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा फिर मत बताओ। कह रही नहीं मैं रिकॉर्डिंग करके लाई हूं, ये सुन लो, और रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग मैं सुन रहा हूं और वो वहां से सुनते सुनते ऐसे कर रही है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा इतनी गंदी बात सुन के? मैंने कहा मेरे लिए थोड़ा कह रहा है, मैं क्यों आऊंगा। कह रही फिर मेरे को तो आना जाया जाए ना। मैंने कहा पहले तो एक काम करो, इस रिकॉर्डिंग को मिटाओ। क्यों? मैंने कहा इसे रोज बैठ बैठ के रामायण पाठ की तरह सुनते हो, फिर बाद में भोग लगाते हो, इसका पाठ बंद करो, इसका पाठ बंद करो। लोगों के दुखड़े बातें लोग सुन रहे हैं, और मैं जब यहां नहीं आया था, इमोशंस ऐसी चीजों को सॉफ्टवेयर का नहीं अकल थी, हार्डवेयर में ही सोचा करता। हार्डवेयर समझते हो ना, बॉडी पार्ट को हम हार्डवेयर बोलते हैं और इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर की कीमत ज्यादा होती है, हार्डवेयर करप्ट नहीं होता। करप्ट क्या होता है? तो हम सबके सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं वायरस घुस गया है, कहीं ना कहीं। और उस वायरस को दूर करने के लिए क्या करना होगा, क्या डालना होगा? एंटीवायरस। एंटीवायरस कोई पेच होता है जिसको कस देंगे। शारीरिक जो मर्जी कर लो, दिक्कत मन में है तो शरीर का जो मर्जी कर लो, दिक्कत मन में है तो मन में ही घुसना पड़ेगा, मन में ही, क्योंकि विचारों से दिक्कत आई है तो विचार ही अच्छे बनाने पड़ेंगे। किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो उसको आर्टिफिशियल सांस ही दी जा रही है, पानी नहीं दिया जा रहा। क्या दिया जा रहा है? जिसको भोजन खाने में दिक्कत है उसको आर्टिफिशियल भोजन खिलाया जा रहा है, सांस नहीं दिया जा रहा, भोजन खिलाया जा रहा है वेंटिलेटर पे। तो हम में से कई लोग वेंटिलेटर पर हैं, इमोशनल वेंटिलेटर पे। कैसे? अच्छा, आप में से कई लोग सच में वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। कईयों को मैं धुंधला दिखना शुरू हो गया हूं, ठीक है ना? आप बड़ी मेहनत से मुझे देख रहे हैं ऐसे करके, फिर थोड़ी देर बाद आपको कुर्सी खाली नजर आती है, फिर जोर लगाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सोचते हो मैं इधर से देखूं, फिर सोचते हो इधर से देखूं, फिर कोई सोचते हैं आज ही तो बोला भगवान ऊपर रहता है तो वो सीधे ऐसे हो रहे हैं और ऊपर वाले को देखे जा रहे हैं। तो भैया अभी भी कई झूम रहे हैं, ये भी प्यार है आपका, साथ वाले से प्यार कर रहे हैं, तू मेरा सहारा, ठीक है ना। अच्छा हो गए, सॉरी भाई आपको डिस्टर्ब किया, कम से कम आप लोग तो मजा ले रहे थे, कुछ तो मजा था, तृप्ति थी। तो सच में अब धुंधला ठीक दिखना शुरू हो गया मैं, है ना। सच में होता होता होता, कई बार सच में धुंधला व्यक्ति दिखता है ये। तो जिसमें मैं बात कर रहा था इमोशनल स्टेबिलिटी, एसिडिटी, कईयों ने लोगों की बातें मन में रखी हुई हैं लेकिन उसको शो नहीं करा, उन्हें कॉन्स्पिरेशन है, कब्ज है, शरीर को आदत पड़ गई है भोजन को संभाल के रखने की, जाने नहीं देता बाहर, क्योंकि मन आपका बातें जाने नहीं दे रहा बाहर। आप बातें जाने दो, शरीर भी जाने देगा। कईयों को पटाख से आंसू आ जाते हैं, ढेर रोना शुरू हो जाता है, कहीं भी इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, उन बेचारों को यहां भी कंट्रोल नहीं है, भाग भाग के जाना पड़ता है, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर बाउल मूवमेंट। कईयों ने दिल में गांठें बांध रखी हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, ये मैं एक एग्जांपल देता हूं, हो सकता है लोग दे रहे हो, अपोलो वाला दिया मैं अक्सर देता हूं, अपने दिल को खोल के रखो, खोल के रखो, खोल के, इस दिल की फितरत है खोलना। एक सेठ जी थे, आप जैसे ही अच्छे थे, और वो एक बार जर्मन से क्रॉकरी लेकर आए थे, घर में रखी हुई थी, उसका नौकर साफ कर रहा था, तो क्रॉकरी जब साफ कर रहा था तो उससे एक प्लेट टूट गई, तो सेठ जी को गुस्सा आया। तो जब गुस्सा आता है तो हम पता क्या करते हैं, एक्सीलेटर पे जैसे पांव देते हैं ना, तो एक्सीलेटर पे जैसे ही पांव दिया ऐसे देख के, एकदम गुस्सा नहीं आता, पहले रिदम बनाना पड़ता है, पहले अंदर पूरा बनाना पड़ता है, प्रेशर बनाना पड़ता है, ऐसे देख के कूद रहे हैं, और जैसे ही प्लेट टूटी और उसने कहा ये क्या करा, जैसे ही करा तो उसको लगा यहां पेन हुआ, तो दर्दा हुआ, तो उसको ले गए हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया इसको हार्ट अटैक आया है, तो डॉक्टर ने अपना चाकू लिया और काट दिया उसे पकड़कर, दिल को काट के उसे खोला और टाके लगा दिए, और सेठ जी को बोला सेठ जी टाके कच्चे हैं लोड नहीं लेना, बोलो सारे टाके कच्चे हैं लोड नहीं लेना, बोलो नहीं लोड नहीं लेना। तो सेठ जी ने सुना और 14 लाख का बिल बनाया, क्योंकि गाड़ी लंबी थी, वापस घर आए, जैसे ही घर आए अंदर घुसे, नौकर से दूसरी प्लेट टूट गई, जैसे टूटी सेठ जी का फिर एक्सीलेटर पे पांव आया, तभी उन्हें याद आ गया, क्या याद आया, सारी पूरी लाइन बोलो ना, टांके कच्चे हैं लोड नहीं, तो दिल पे हाथ रख के बोले भाई थोड़ा ध्यान से किया कर। तो सेठानी बोली सेठ जी यही बात पहला बोल लेते तो 14 लाख तो बच जाते। प्लेट पहले भी टूटी, अब भी टूटी, और ये बाद में भी टूटनी है, ये तो टूटनी है। तो आप सोच लो, आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, उन्हें यही टेंशन है, बहू दूध उबाल के गिर देती है, शरीर छूट जाएगा, भूत बन के वहीं घूमेंगे, दूध वैसे ही बिखरेगा, वैसे ही बिखरेगा। हरियाणा में ट्रक के पीछे लिखा होता है ये तो नूह ही चल लेगी, ये पूरा संसार नूह ही चल लेगा, और आपने सोच लेना है, बोलो बोलो ना, टांके कच्चे हैं लोड नहीं लेना। लोड लेते ही डॉक्टर साहब कैंची लगाएगा, फिर सिलेगा, फिर लाइन बोलेगा, इसीलिए पहले से ही समझ लेना पक्का, क्योंकि अपोलो में भी लिखा हुआ है हॉस्पिटल में, बचपन में दिल खोल लेते यारों के साथ तो अब ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसने खुलना है, इसने खुलना है, आप भींच के रखें ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा करते हैं। हम में से तो कईयों के इमोशन ऐसे हैं वो आंखों से किसी को भस्म कर दे इतनी तरह घूर के देखते हैं। अगर भगवान उन्हें शक्ति दे देना कि तो जिसको देखे वो भस्म, तो आधा गुड़गावा आधा दिल्ली भस्म। और कई बार तो घर में भी 6 सदस्य के केवल 3 सदस्य रह गए, क्या 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 भस्म, कोई भी कुछ करे पहले घूर के देखते हैं ऐसे, मतलब आदि इतना घूर के देखते हैं। अगर आप कच्ची रोटी को देख लेना उतनी ताकत से तो वो पक जाए, इतना गुस्सा आता है आप लोगों को, इतना गुस्सा। उस इमोशंस को ध्यान रखना, हर बार ये सीखना है, ये परमात्मा से सीखना है, वो हमारे लिए आदर्श पिता, आदर्श माँ, आदर्श भाई, आदर्श दोस्त बनकर आता है और हमें सिखाता है रिश्ते कैसे होते हैं। किसी को प्यार से आगे बढ़ाना है, किसी को सबक नहीं सिखाना। हमारी आधी जिंदगी रिश्तों में बीत गई, इसको मैं सबक सिखा दूंगी। पत्नी सोचती है पति को सिखा दूं, पति सोचता है पत्नी को सिखा दूं, बच्चे सोचते हैं माँ बाप को सिखा दे, खुद कोई सीख नहीं रहा, खुद कोई नहीं सीख रहा। सब एक दूसरे को ठीक करने में लगे हुए हैं। यहां भगवान ने कहा किसी को ठीक नहीं करना, बोलो। देखो कितनी अच्छी बात बोली, ये पॉइंट तो अपनी तरफ से ही लिख देना जब भी कोई बात। और देखो हमारे इमोशंस हम कितना ताकतवर है समझते हैं। यहां सड़क पे जा रहे हो, सामने रोड के ऊपर बैल खड़े हैं, गायें खड़ी हैं, आप सड़क पे गाड़ी मोड़ कर ले जाते हो ऐसे करके, लेकिन वहीं 4 आदमी खड़े हैं तो कार उनके बीच में घुसा के बोलते हो ये खड़े होने की जगह है, पंगे तो लेने की आदत है ना हमारी, जाके घुसते हैं, जाके घुसते हैं। वो आप बैल मुझे मार वाली बात है, वो आप बैल नहीं आप भाई मुझे मार, दे भिड़ते हैं, दे भिड़ते हैं, दो भिड़, तो अटकना और झटकना बंद करते हैं, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। और कईयों ने सोचा है सारी जो सिस्टम है ना उसका जिम्मेदारी मेरी है। मान लो मैं सेंटर पे रहता हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं अगर सेंटर से 4 दिन निकल जाऊंगा ना तो सेंटर रुक जाएगा, ये काम रुक जाएगा, ये लगता है ये काम रुक जाएगा। कईयों को ऐसा लगता है घर में कि वो तो मैं हूं, 2 दिन कैसे निकलूं, घर रुक जाएगा। उन लोगों को कमर दर्द रहता है क्योंकि उन्होंने जीवन में सबका बोझ ढोया हुआ है यहां बैठ के, उनको स्लिप डिस्क स्पाइंडोलाइसिस, कहीं ना कहीं वो बेचारे ऐसे ही करके चलते रहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा घर उठाया हुआ है यहां। और जिनको ये आदत बड़ी, जिनका दिल कहता है मना कर देना चाहिए किसी की बातों को चुभने वाली, लेकिन वो गर्दन ऐसी रखते हैं और अंदर से मन कहता है मना कर दे, ऐसे कर दे, वो कर ही नहीं सकते, तो उनके गले में पट्टा बंधा हुआ है सर्वाइकल का। जितने भी इमोशनल जब प्रेशर आता है तो उनका पट्टा मोटा होता चला जाता है। आपकी एक एक बीमारी मन की, मन के सोच पर डिपेंड करती है। इलॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल प्यार, इलॉजिकल खुशी, इलॉजिकल किसी के पीछे जाकर उसका ध्यान रखना, ये थायराइड का नतीजा। प्रेम है उस व्यक्ति में, गुण, आप जितने भी थायराइड के पेशेंट देखेंगे सब गुणी है, इतना अच्छा उनका नेचर है, एक भी बुरे नेचर वाले को थायराइड नहीं है। अब ये मत कहना इससे ये सीख मिलती है आज से हम भी बुरे हो जाए, सबसे अच्छा नेचर आपके परिवार में उसी व्यक्ति का होगा और जो जिसको थायराइड हुआ हुआ है, और वो खुश, वो प्यार है, लेकिन प्यार भी इतना भर भर के दे रहा है। अब देखो आपकी चाय है, उसमें चीनी एक चम्मच ही तो चाहिए ना, अब 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, 8 डाल दो, तो चाय को क्या करना पड़ेगा, थूकना पड़ेगा। तो वो इतना इलॉजिकल उनके प्यार या कोई चीजें भर रही हैं, तो वो चीजें तो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशंस को स्ट्रांग बनाए। तो स्ट्रांग कैसे बनेगा, जो सबसे बड़ा स्ट्रांग और स्ट्रेंथ वाली शक्ति है इमोशनल, उसके साथ अपने को जोड़ दे, अपने साथ जोड़ दे। और जब उसको जोड़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे। आप देखो, चार पांच पॉइंट के बाद मैं खत्म करता हूं। वो हम सब का पिता है, लेकिन हमारे इस पूरी दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है वो रोता है, वो रोता है। उसके सारे संसार उसके बच्चे हैं, कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, कितने भूखे मर रहे हैं, कितने जिंदा हैं, चिंता है, मस्त रहता है। ऐसा नहीं कि केयरलेस है, जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता, और हमने उनकी भी जिम्मेदारी ली हुई है। यहां लोगों की टेंशनों के तरीके देखो। एक माता मेरे पास आई, उसकी बेटी ब्याह कर दूसरे घर चली गई है, उस बेटी को वहां प्लम्बर नहीं मिल रहा दूसरे स्टेट में, यहां बैठ के इसको टेंशन हो रही है कि तीन दिन से बाथरूम में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा किसको? क्या बेटी के बाथरूम को। क्या वो कहां रहती है? सूरत में रहती है। अब यहां से बाई एयर प्लम्बर भेजेंगे? टेंशन ली हुई है, ली हुई है। यहां YouTube खोला हुआ है, ये बेटी की टेंशन फ्री चल रहा है, टेंशन टेंशन टेंशन। और आप सब इतने बड़े योगी हो, इतने योगी तो हम भी नहीं है। हम भी सुबह चार से पांच उठे तो इतना हमारा योग नहीं लगता जितना आप लोगों का योग लगता है। टेंशन में बस में बैठ जाते हैं ऐसे, और फिर धीरे धीरे मुंह और आंखें दोनों खुल जाती हैं, और वीडियो चलनी शुरू। पहुंच गए किसी का दुख लेकर, अपने करीबी रिश्तेदार का, बच्चा को एडमिशन नहीं हो रहा, और साथ वाली सीट पे जिसका एडमिशन हो गया वो कह रही है उसको नौकरी कब मिलेगी। अब 15 मिनट की ऐसी वीडियो आपने तैयार करी हाई डेफिनेशन की, ऐसे पिक्सल जो अभी तक दुनिया ने तैयार नहीं करे, विद साउंड इफेक्ट, बस में आवाज आ रही है, धोला कुआं सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि उसमें डूब रहे हैं, और कईयों का म्यूट बटन खराब है, यहां से आवाजें भी बाहर आ जाती हैं जो वो सोच रहे हैं। पंग 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 पंग। किचन में से बोलते हैं, मम्मी क्या हुआ? कहे नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? और कईयों का इशारे भी चलते हैं, पता लग रहा है अंदर इस समय युद्ध का सीन चल रहा है, और कईयों का प्यार का सीन चल रहा होता है, फिर मैं वहां जाके कहूं, पूरी एक्टिंग चल रही होती है। और आधे घंटे बाद उठते हैं, फिर आके हमें कहते हैं हमें राजयोग सिखाओ। मैंने कहा कमाल है, आप तो पहले से ही राजयोगी हो, आधा घंटा आप बस में शोर में सब्जी मंडी में बैठकर इतनी कंसंट्रेशन से, अरे यहां तो चित्र के ऊपर लाइट, लाल लाइट के ऊपर लोग जब आते हैं तो ऐसे करके देखते हैं, वो बस में ऐसे बैठे हैं, बस झटके भी ले रही है, और किसी ने पूछ भी लिया थोड़ा साइड हो जाओ, हैं फिर वहीं से कहानी शुरू हुई है, बिल्कुल वहीं से, हाँ फिर वहीं ऐसे बैठते हैं, फिर वहीं से फिल्म दोबारा से शुरू, फिर रात को कहते हैं गर्म सा हो रहा है ये, अरे सुबह से शाम तक इंजन को चलाए रखोगे तो ये फूक भी जाएगा किसी दिन, धुआं निकल देगा इसमें से। अब ये धुएं की तो नतीजे है, बेचारों के यहां की वायरें ही गायब हो गई हैं। भाई जब ये इंजन गर्म होगा तो आसपास सारे वायर पहले जल के गायब हो जाएंगे ना, मेरे भी कम हो रहे हैं। तो मकसद क्या रहा? कुछ भी हो जाए तो स्टेबल रहना। अरे हम वो स्टैचू खेला करते थे, अंगद का एक गेम खेला करते थे, हम अकड़ के ऐसे खड़े हो जाते थे और लोग आके हमें हिलाते थे, हम हिलते नहीं थे, जो नहीं हिला और लोगों ने हिलाया वो जीत गया। यही जिंदगी है, आप खड़े हैं, लोग हिला रहे हैं, हिलना नहीं है। यहां तो हम तैयार करते, तू मेरे को आ, मैं हिलने को तैयार बैठा हूं, सहा नहीं जा रहा, जल्दी आ, बस दूर से उंगली कर और धाड़ गिरा ले, तूने गिर दिया, शुरू हो गए, ठीक है, मस्त है, पक्का है, फाइनल ना। कुछ भी हो जाए, यहां से राजयोग आपको एक गारंटी देता है इमोशनल स्टेबिलिटी की, बिल्कुल। राजयोगा मेडिटेशन इज जस्ट लाइक ए शॉकर, होता ना शॉक ऑब्जर्वर, होता शॉकर होता कार या मोटरसाइकिल में होते हैं। शॉकर ये गारंटी नहीं करता कि आपकी यात्रा में खड्डे नहीं आएंगे, लेकिन ये गारंटी करता है जब भी खड्डा आएगा आप बिना झटके के आराम से बाहर निकल जाएंगे। ये परम शक्ति का ध्यान और प्यार, ये परम शक्ति के जो इमोशंस की जो हमारे को शक्तियां हैं वो ये गारंटी करती है, ये नहीं करती कि आपके जीवन में कोई परिस्थितियां नहीं आए। अगर आप इस धोखे में आए हो कि जब से मैं भगवान के आऊंगी मेरे सारे कोई समस्या नहीं आए, तो फिर कहीं और देख लेना। खड्डे आएंगे, पर ये गारंटी है हर खड्डे से आप ऐसे निकलोगे जैसे झूला होता है। तो ये जिंदगी जीना ही भावनात्मक स्थिरता है, और ऐसे स्थिर रहना ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, यही योगी है। आप जंगल में जाकर अगर कहें मुझे गुस्सा नहीं आता, तो पेड़ पौधों पे आएगा। ऐसे ही माहौल में जहां आम आदमी सोचे व्यक्ति ऐसा हो जाना चाहिए और आपको नहीं हो रहा, इसी को तो कलाकार बोलते हैं। रस्सी पे चलने पे तो तालियां बजती हैं, फर्श पे चलने वाले को तालियां बजाते हैं क्या? जब संकट की घड़ी आए और उस संकट में भी आप एक बल एक भरोसे खड़े रहें, यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति। परमात्मा याद में बैठेंगे, दो मिनट आपने यही सोचना है कि अब से मैंने क्या करना है। आप फिल्म बनाना कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है, घर में जो दुख दे रहे हैं ले रहे हैं आसपास, सब सारी गाड़ी नू ही चल रही है, लेकिन मैं कैसे उनसे बिल्कुल स्टेबल होके जीवन जी रहा हूं, ठीक है, और आनंद ले रहा हूं, ठीक है। अभी दो मिनट यही डिसीजन। अच्छा ठीक है।
जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन।